सिद्धेभ्यो नमः सिद्धेभ्य जयैधवलङ्गते नाउर्यसयलभुवनभवनगणो केवलनाणशरीरो अनंजनो नामोचन्दो। यह श्री वीरसेनाचार्य रचित जयधवला टीका है, जो कषाय पाहुड़ तथा चूर्णी सूत्र पर रची हुई है। कषाय पाहुड़ के कर्ता है गुणधर भट्टारक आचार्य और चूर्णी सूत्र के कर्ता है यति वृषभाचार्य, और जिन्होंने मूल में भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है। अभी हम प्रथम अधिकार पेज दोष विहत्ति उसमें से पृष्ठ संख्या 16 पर आ गए, एकदम नीचे। अवधि ज्ञान संबंधी अपना विषय चल रहा है। मति ज्ञान की बात हमने देखी थी, उसके 336 भेद। उसके बाद श्रुत ज्ञान की बात बाद में करेंगे, पहले अवधि ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। तो उसमें हमने बहुत सारी बातें देखी थी कि अवधि ज्ञान दो प्रकार से होता है, भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय, और उसमें भी अलग अलग वर्धमान, हीयमान और प्रतिपाती और प्रतिपाती, अनुगामी अननुगामी वगैरह वगैरह बहुत सारे भेद उसमें होते हैं। अब हम नीचे से दूसरी लाइन देख रहे हैं। जिन जीवों के ये एक क्षेत्र अवधि ज्ञान क्या है और अनेक क्षेत्र क्या है, ये बात कल हमने देखी थी, फिर उसको दोबारा देखते देखो। नीचे से पांचवी लाइन, उससे भी ऊपर, नीचे से छठी लाइन, छठी सातवीं लाइन, सातवीं लाइन वो भी ऊपर है, हाँ वहां से लेना चाहिए। तीन तीन छः, तीन नौ, एक दसवीं लाइन नीचे से देखो। जो अवधि ज्ञान शरीर के किसी एक देश से उत्पन्न होता है उसे एक क्षेत्र अवधि ज्ञान कहते हैं, शरीर के यानी वहां के आत्म प्रदेशों से। जो अवधि ज्ञान शरीर के प्रतिनियत क्षेत्र के बिना उसके सभी अवयवों से उत्पन्न होता है, यानी संपूर्ण आत्म प्रदेशों के द्वारा, तो उसको अनेक क्षेत्र अवधि ज्ञान कहते हैं। ये जो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है वो अनेक क्षेत्र होता है, और गुण प्रत्यय के लिए विशिष्ट वो जो चिन्ह होते हैं नाभि के ऊपर शरीर के, वहां के आत्म प्रदेशों के द्वारा होता है। देखो, देव और नारकियों के अनेक क्षेत्र अवधि ज्ञान ही होता है, क्योंकि देव और नारकी अपने शरीर के समस्त प्रदेशों से अवधि ज्ञान के विषयभूत पदार्थों को जानते हैं। इसी प्रकार तीर्थंकरों के भी अनेक क्षेत्र अवधि ज्ञान होता है, फिर भी शेष सभी जीव शरीर के एक देश से ही अवधि ज्ञान के विषयभूत पदार्थों को जानते हैं, ऐसा एकांत नियम नहीं है। उसमें भी ऐसा ही है, ऐसी बात नहीं होती, क्योंकि परमावधि और सर्वावधि के धारक गणधर देव आदि मनुष्यों के भी अनेक क्षेत्र अवधि ज्ञान पाया जाता है। यानी परमावधि और सर्वावधि भी अनेक क्षेत्र अवधि ज्ञान है, ये बात बता रहे। यहाँ तक तो हमने कल पढ़ा था, नहीं उनके एक देश प्रत्यक्ष अलग बात है और एक क्षेत्र अनेक क्षेत्र अलग बात है। देखो, एक देश प्रत्यक्ष का अर्थ है पार्शल प्रत्यक्ष, यानी स्पष्टता जो है जो केवल ज्ञानियों के है ऐसी इनके नहीं है, इसलिए उनको एक देश प्रत्यक्ष कहते हैं, क्योंकि कुछ लिमिटेशन है ना, वहाँ मर्यादा है, इसलिए उनका केवल ज्ञान की तरह पूर्ण विशद ज्ञान नहीं है। जिन जीवों के एक क्षेत्र अवधि ज्ञान होता है, नीचे से दूसरी लाइन, उनके भी अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षोभशम सर्वांग ही होता है। ये बात क्या कहना चाहते हैं? अवधि ज्ञानावरण का जो क्षोभशम है वो तो सभी आत्म प्रदेशों में इक्वल है, सर्वांग में होता है। अभी पंचेंद्रिय जीवों को पांचों ही इंद्रिय और मन के द्वारा जानने का जो क्षोभशम है वो खाली आत्म प्रदेश जहां चक्षु के हैं उसमें ही है क्या? पूरे में है तो संपूर्ण आत्म प्रदेशों में क्षोभशम, परंतु वहां प्रदेश आते हैं वो प्रदेश घूमकर अन्य जगह चले जाएंगे तो दूसरे प्रदेश वहीं से जानने का कार्य करेंगे। तो वहां के प्रदेशों के द्वारा ये बाह्य दैवेंद्रिया जहां बनी है वहां से जानने का कार्य हो रहा है, परंतु जानने की इक्वल शक्ति तो सभी आत्म प्रदेशों में है और ज्ञानावरण का क्षोभशम भी सभी में इक्वल है। यही बात यहां बताते हैं। अवधि ज्ञानावरण का क्षोभशम तो सभी आत्म प्रदेशों में पाया जाएगा, परंतु उपयोग रूप कार्य विशिष्ट प्रदेशों से होता है। ये किसमें? हाँ, अवधि ज्ञान का विषय मत कहो, अवधि ज्ञान का साधन कहो या निमित्त कहो। विषय तो पुद्गल है ना? तो आप तो ये पूछना चाहते हैं कि इंद्रिया उसमें निमित्त है क्या? तो नहीं है, क्योंकि हमने देखा प्रत्यक्ष ज्ञान है, वो आत्म प्रदेशों के डायरेक्ट सीधा हो जाता है। सर्वांग से जानने का अर्थ होता है और कुछ आत्म प्रदेशों से जानना अर्थ होता है, वहां के आत्म प्रदेश जानेंगे, जानने का कार्य वही के आत्म प्रदेशों से होगा, अन्यत्र से नहीं होगा। इसको कहेंगे एक देश या एक क्षेत्र। एक देश अलग बात है, एक क्षेत्र अलग बात है।
सुनिए, देखो एक क्षेत्र की बात हम समझते हैं, जैसे आप देखते हैं, देखने यानी आंख के द्वारा आपको ज्ञान होता है, तो देखने का काम नाक कर रही है या आंख कर रही है? वैसे अवधि ज्ञान में कुछ विशिष्ट क्षेत्र, नाभि के ऊपर के कुछ अलग अलग चिन्ह होते हैं, उन चिन्हों के जगह जो आत्मा के प्रदेश है वो जानेंगे, लेकिन सिर्फ आंख जानती है ऐसा नहीं। अपना ज्ञान गुण तो पूरे आत्म प्रदेशों में यानी असंख्यात प्रदेश में फैला हुआ है, तो जानने का कार्य तो सभी जगह से हो रहा है। लेकिन मीडिया जो है वो आंख है, वैसे एक प्रदेश से अवधि ज्ञान जानता है यानी वहां के प्रदेशों से वो ग्रहण करेगा, जानेगा तो सर्वांग से, और वो जो अनेक प्रदेशों से जानते हैं वो कहीं से भी जानेगा।
देखो जिन जीव, फिर पढ़ती हूँ मैं नीचे से दूसरी लाइन। जिन जीवों के एक क्षेत्र अवधि ज्ञान होता है उनके भी अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षोभशम सर्वांग ही होता है, यानी क्योंकि कर्म यूनिफॉर्मली पूरे स्प्रेड अप है तो उसका क्षोभशम भी सर्वत्र पाया जाएगा। यहाँ एक क्षेत्र का अभिप्राय इतना ही है कि जिस प्रकार प्रतिनियत स्थान में स्थित, प्रतिनियत यानी निश्चित स्थान में जो है, ऐसे चक्षु आदि इंद्रिया मति ज्ञान की प्रवृत्ति में साधकतम कारण होती, वही उन्होंने भी उदाहरण दिया। तो वहीं से उनका चक्षु जहाँ है वहीं से पदार्थों को, उसके वर्ण को जानने का कार्य होता है, जिसको हम कहते हैं ना पदार्थों को हम देखते हैं, वो कहाँ पर है? जहाँ चक्षु इंद्रिया स्थित है वहाँ के आत्म प्रदेश, क्योंकि उसमें निमित्त है वो बाह्य वो इंद्रिय की रचना जो हुई है वो उसमें निमित्त है। वैसे यहाँ अवधि ज्ञान के बारे में भी जो देशावधि के जो बहुत सारे मनुष्य तिर्यंचों में वो शुभ चिन्ह जो विशिष्ट है नाभि के ऊपर, वहाँ से उनका जानने का कार्य होगा, और विभंग ज्ञानियों के लिए नाभि के नीचे कोई अशुभ चिन्ह होते वहाँ से जानने का कार्य होता है, कारण होती। उसी प्रकार यहाँ लिखा देखो, नाभि से ऊपर शरीर के विभिन्न स्थानों में स्थित श्रीवत्स आदि आकार वाले अवयवों से अवधि ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। ये स्वस्तिक होता है और अन्य अन्य भी कुछ साइंस होते हैं उसमें। हाँ, इसलिए वे अवयव अवधि ज्ञान की प्रवृत्ति में, वो धी बराबर करना, साधकतम कारण है, यानी ये निमित्त है। शरीर से तो कोई अवधि ज्ञान नहीं होता है, वहां के आत्म प्रदेशों से होता है। जैसे आंख से देखना नहीं होता है, देखने का कार्य तो आत्म प्रदेशों के द्वारा जानने का वहां से कार्य हो रहा है, वैसे यहाँ पर विशिष्ट अवयव वहाँ पाए जाते हैं, चिन्ह पाए जाते हैं। अवयव यानी कुछ ऐसे जैसे उंगलियां वगैरह ऐसा कुछ, वहां तो कुछ बाहर नहीं आता है, कोई विशिष्ट चिन्ह होते हैं वहां पर। इन स्थानों में से किसी के एक स्थान से, किसी के दो आदि स्थानों से अवधि ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। ये स्थान तिर्यंच और मनुष्य दोनों के ही नाभि से ऊपर होते हैं, किंतु विभंग ज्ञान नाभि से नीचे के अशुभ आकार वाले स्थानों से प्रकट होता है। जब किसी विभंग ज्ञानी के सम्यक दर्शन के फलस्वरूप विभंग ज्ञान के स्थान में अवधि ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, तब उसके अशुभ आकार वाले स्थान मिटकर नाभि के ऊपर श्रीवत्स आदि शुभ आकार वाले स्थान प्रकट हो जाते हैं। ये मुझे किसी ने पूछा था, सम्यक दर्शन होता है तो ऐसे कोई चिन्ह होते हैं क्या जैसे अवधि ज्ञान में बताए? ऐसा कोई चिन्ह प्रकट होता है क्या? सिंह आ जाते। अच्छा, यानी कोई विभंग ज्ञानी है और उसको सम्यक दर्शन हो गया तो उसको अवधि ज्ञान होगा अभी, तो उसके वो अशुभ चिन्ह मिटकर शुभ हो जाते हैं कुछ। अगर स्थान प्रकट होते हैं और वहां से अवधि ज्ञान की प्रवृत्ति होने लगती है। इसी प्रकार जब किसी अवधि ज्ञानी का अवधि ज्ञान सम्यक दर्शन के अभाव में विभंग ज्ञान रूप से परिवर्तित हो जाता है, तब उसके शुभ आकार वाले चिन्ह मिटकर नाभि से नीचे अशुभ आकार वाले स्थान प्रकट हो जाते हैं और वहां से विभंग ज्ञान की प्रवृत्ति होने लगती है। पहले कहे गए इन 10 भेदों में से बहुप्रत्यय अवधि ज्ञान में अवस्थित अनवस्थित, अवस्थित का अर्थ हमने क्या कहा था? उतना का उतना रहता है, यानी उसमें वृद्धि हानि नहीं होती है। अनवस्थित यानी कभी बढ़ता है कभी घटता है, वो अनवस्थित है। अनुगामी यानी उसके साथ साथ जाता है, क्षेत्र के अपेक्षा भव की अपेक्षा उसको अनुगामी कहा था। और अननुगामी यानी उसके अन्य क्षेत्र में वो नहीं रहता, उसको अननुगामी कहा। और अनेक क्षेत्र, ये 5 भेद संभव है। किसमें? बहुप्रत्यय में। बहुप्रत्यय अवस्थित भी हो सकता है, अनवस्थित भी हो सकता है, अनुगामी अननुगामी और अनेक क्षेत्र। गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान में 10 भेद पाए जाते हैं, उसमें भी देशावधि में पाए जाएंगे। देशावधि, परमावधि और सर्वावधि की अपेक्षा देशावधि में 10 भेद, ये लिखा है यहाँ। परमावधि में हीयमान, प्रतिपाति और एक क्षेत्र, इन 3 को छोड़कर शेष 7 भेद, क्योंकि परमावधि वो तो वर्धमान होकर केवल ज्ञान तक पहुंचेगा। तथा सर्वावधि में अनुगामी, अननुगामी, अवस्थित, अप्रतिपाति और अनेक क्षेत्र, ये 5 भेद पाए जाते हैं। हाँ, बहुप्रत्यय में अवस्थित अनवस्थित भी लिया था, अवस्थित लिया। सर्वावधि है ना, सर्वावधि में कोई बढ़ने का सवाल ही नहीं, सर्वावधि तो सर्वावधि रहता है। तो उसमें, क्योंकि उसमें जघन्य उत्कृष्ट मध्यम भेद नहीं है, इसलिए उसमें अनवस्थित वाला नहीं होगा। अवस्थित है क्योंकि सर्वावधि सर्वावधि रूप से कायम रहता है, तो उसको अवस्थित कहेंगे। अप्रतिपाती क्योंकि वहां ना सम्यक का घात है ना संयम का है। अनुगामी अननुगामी क्षेत्र की अपेक्षा लेना। यहाँ लिखा है, अरे भवांतर है सर्वावधि में, परमावधि और सर्वावधि में अननुगामी भेद भवांतर की अपेक्षा कहाँ है? हमने पहले देखा था सर्वावधि वाला तो नियम से उसी भव में जाता है मोक्ष, ऐसा मुझे भी लगता है। हमने पढ़ा था सर्वावधि वाला तो नियम से जाता है जो कुछ है। अब मन परे ज्ञान की बात करेंगे। यहाँ पर मन की पर्याय को मन परे कहते हैं। तथा उसके साहचर्य से, साहचर्य ने उसके सहचरपना से, उसके साथ होने के कारण ज्ञान भी मनपर्यय कहलाता है। इस प्रकार मनपर्यय के ऊपर रफार बीच वाले, इस प्रकार मनपर्यय रूप जो ज्ञान है उसे मनपर्यय ज्ञान कहते हैं। वह मनपर्यय ज्ञान ऋजुमति और विपुलमति के भेद से दो प्रकार का है। ये रू ह्रस्व चाहिए वैसे, डबल वाटी दिया ना, सिंगल चाहिए। क्या कहते हैं ऋजुमति और विपुलमति? ऋजुमति का विषय अल्प है और वो सीधे मन की बात जानने वाले, और विपुलमति का विषय ज्यादा है। यहां पर इन ज्ञानों के लक्षणों को जानकर कथन कर लेना चाहिए, इतना तो मूल इसमें बताया था जयधौला में। अब उस पर विशेषार्थ यहाँ लिख रहे हैं। ये कौन, कैलाश चंद जी है ना, यहाँ लिखने वाले कौन है? फुलचंद जी, फुलचंद जी भी है, कैलाश चंद जी भी है, और महेंद्र कुमार है काशी के संपादक है वो फुलचंद जी। अब विशेषार्थ को हम देखते हैं। यहाँ अर्थ के निमित्त से होने वाली मन की पर्यायों को, अर्थ के निमित्त से नहीं, पदार्थ के निमित्त से मन की पर्यायों को मनपर्यय, और इनके प्रत्यक्ष ज्ञान को मनपर्यय ज्ञान कहा है। हाँ, 20वें पान पर अर्थ की डेफिनेशन बताइए, शंका समाधान जो किया है, ये सेकंड नंबर का जो समाधान है 20वें पेज पर, जो जाना जाता है उसे अर्थ कहते हैं। हमने पहले इसमें भी देखा था पंचाध्यायी में, द्रव्य के जो समानवाची शब्द है, गुण के और पर्याय के, तीनों के लिए अर्थ शब्द आया था। तो जो जाना जाता है उसे अर्थ कहते हैं। अब यहां कहते हैं, यहां अर्थ के निमित्त से होने वाली मन की पर्यायों को मनपर्यय, और इनके प्रत्यक्ष ज्ञान को मनपर्यय ज्ञान होता है। ओके, दूसरे के मन में, तो दूसरे के मन की जो पर्याय हुई अर्थ के निमित्त से, उसको जानने वाला ज्ञान, इसको ऋजुमति और विपुलमति, इसके ऋजुमति और विपुलमति ये दो भेद हैं। इनमें से ऋजुमति मनपर्यय ज्ञान के ऋजु मनोगत, ऋजु वचनगत और ऋजु कायगत विषय की अपेक्षा तीन भेद हैं। उसके विषय मनो ऋजु वचन, ऋजु मन, ऋजु वचन और ऋजु कायगत अलग अलग विषय की अपेक्षा तीन भेद होते हैं। जो पदार्थ जिस रूप से स्थित है उसका उसी प्रकार चिंतन करने वाले मन को ऋजु मन कहते हैं। जो पदार्थ जिस रूप से स्थित है उसका उसी प्रकार कथन करने वाले वचन को ऋजु वचन कहते हैं, तथा जो पदार्थ जिस रूप से स्थित है उसे अभिनय द्वारा उसी प्रकार दिखलाने वाले काय को ऋजु काय कहते हैं। इस प्रकार जो सरल मन के द्वारा विचारे गए मनोगत अर्थ को जानता है वह ऋजुमति मनपर्यय ज्ञान है। जो सरल वचन के द्वारा कहे गए और सरल काय के द्वारा अभिनय करके दिखलाए गए मनोगत अर्थ को जानता है वह भी ऋजुमति मनपर्यय ज्ञान है। वो अर्थ तो मनोगत है, किसके द्वारा वो दिखलाया गया है उसमें डिफरेंस है। वचन के द्वारा कहे गए और काय के द्वारा अभिनय करके दिखलाए गए मनोगत अर्थ को जानने से मनपर्यय ज्ञान श्रुतक ज्ञान नहीं हो जाता, क्योंकि यह राज्य या राज कितने दिन तक वृद्धि को प्राप्त होगा ऐसा विचार करके वचन या काय द्वारा प्रश्न किए जाने पर राज्य की स्थिति तथा राजा की आयु आदि को प्रत्यक्ष जानने वाला ज्ञान श्रुतज्ञान नहीं कहा जा सकता। किसी ने वचन में प्रश्न पूछा ना, या अभिनय से पूछा ये कितने दिन रहेगा, तो ऐसे को उन्होंने जाना तो प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा, आत्म प्रदेशों के द्वारा डायरेक्ट जाना है, इसलिए उसको श्रुतज्ञान नहीं कहा जा सकता। इस ऋजुमति मन परे ज्ञान की उत्पत्ति में इंद्रिय और मन की अपेक्षा रहती है। ऋजुमति मन परे ज्ञानी पहले मति ज्ञान के द्वारा दूसरे के अभिप्राय को जानकर उसके पश्चात यानी अनंतर मन परे ज्ञान के द्वारा दूसरे के मन में स्थित दूसरे का नाम स्मृति मति चिंता जीवन मरण इष्ट अर्थ का समागम अनिष्ट अर्थ का वियोग सुख दुख नगर आदि की समृद्धि या विनाश आदि विषयों को जानता है। देखो यहाँ बहुत विस्तार से स्पष्ट बताया अच्छी तरह से। यहाँ अपेक्षा किसके लिए, मति ज्ञान पूर्वक मन परे ज्ञान होता है, तो मति ज्ञान में इंद्रिय और मन की अपेक्षा है, और बाद में मन परे ज्ञान जो जानता है वो बिना इंद्रिय और मन के जानता है, वो तो आत्म प्रदेशों के प्रत्यक्ष ज्ञान है, वो तो अपेक्षा है ना, उसके पूर्व मति ज्ञान होता है, उस अपेक्षा से उसको अपेक्षा है कहा। जैसे मुनि के सामने आप गए और प्रश्नात्मक खड़े रहे, पूछा भी नहीं, ऐसा भी होते ना, या पूछ लिया कि आपने पूछ लिया कि अभी मेरा घर बांधने का कार्य चल रहा है कब पूरा होगा, तो उन्होंने प्रत्यक्ष ज्ञान की, वो सुना तो मति ज्ञान के द्वारा, सामने वाले को देखा और फिर उसके मन में जिस संबंधी विषय चल रहा था उसके बारे में, यहाँ लिखा ना किसी का नाम उसने पूछा, या उसकी स्मृति मति चिंता जो कुछ जीवन मरण के संबंधी उसके जो कोई प्रश्न है उसका उकेल वो उन्होंने मन परे ज्ञान के द्वारा जाना। तात्पर्य यह है कि ऋजुमति मन परे ज्ञान संशय विपर्य और अनध्यवसाय से रहित व्यक्त मन वाले जीवों से व्यक्त मन वाले जीवों से संबंध रखने वाले या वर्तमान जीवों के वर्तमान मन से संबंध रखने वाले त्रिकालवर्ती पदार्थों को जानता है। पदार्थ भले त्रिकालवर्ती, जो वो मन के द्वारा चिंतन कर रहा है उसको, अतीत मन और अनागत मन से संबंध रखने वाले पदार्थों को नहीं जानता है। यह ज्ञान काल की अपेक्षा, यानी वो मन वर्तमान है, यहाँ पर अतीत मन और वर्तमान, अभी वर्तमान में किस संबंधी विचार चल रहा है उसकी बात चल रही है, परंतु उसके दो तीन भाव आगे पीछे का वो तो जानेंगे। अतीत मन ये हो गया। यह ज्ञान काल की अपेक्षा जघन्य रूप से दो या तीन भाव को जानता है, उत्कृष्ट में 7 और 8 भाव, ऐसा भी हमने देखा, और फिर विपुलमति के लिए जघन्य उतना है और उत्कृष्ट और ज्यादा होगा। इसका यह अभिप्राय है यदि वर्तमान भव को छोड़ दिया जाए तो दो भवों को और वर्तमान भव के साथ तीन भवों को जानता है, तथा उत्कृष्ट रूप से यह ज्ञान वर्तमान भव के साथ 8 भवों को, ये जघन्य और उत्कृष्ट की मर्यादा बता रहे हैं, और वर्तमान भव के बिना 7 भवों को जानता है। क्षेत्र की अपेक्षा जघन्य रूप से गव्योति पृथक, यानी पृथक्त्व कोष, गव्योति यानी गांव जिसको कहते हैं, गांव यानी कोष, और उत्कृष्ट रूप से योजन पृथक्त्व प्रमाण क्षेत्र में स्थित विषय को जानता है। औ बोधि ज्ञान हो तो जरूरी नहीं है कि मन पर वो उपयोग कैसे लगेगा, उस पर निर्भर है। यहाँ तो सामने वाला जीव का कोई प्रश्न है, उसके मन में कोई क्वेश्चंस है, ये अपेक्षा है, हाँ उसकी बात है। सामने वाला कोई जीव है और वर्तमान में, हाँ ये मति ज्ञान पूर्वक होता है और अवधि ज्ञान है अवधि दर्शन पूर्वक होता है। देखो गव्युत यानी कोष, हाँ एक गव्युति 2000 धनुष का होता है वही तो कोष, और पृथक्त्व 3 से लेकर 9 तक कहलाता है। पृथक्त्व का अर्थ है 3 से 9। अभी कहीं कहीं पृथक्त्व अधिक के लिए भी आता है, परंतु वहां उसकी बात बता दी जाती है, पर यहाँ पृथक्त्व से 8 लेना चाहिए। यह लिखा देखो, अर्थात जघन्य रुजुमति मनपरे ज्ञान 8 गव्युति के घन प्रमाण क्षेत्र में स्थित, ये घन प्रमाण लिख दिया। जब मनपरे ज्ञान का क्षेत्र बताया जाता है तो भुजा कोटि और वेद उसको घन कहते ना, जिसको हम कहते लंबी रुंदी और ऊंचाई, तो उतना घन क्षेत्र लेना उसका। मैक्सिमम जब हम कहते ना 45 लाख योजन वाली, तो वो स्क्वेयर ऐसा और फिर हाइट में भी उतना लेना। हाइट में तो कम हो जाएगा, हाइट में तो मध्य लोक प्रमाण होगा। अर्थात जघन्य रुजुमति मनपरे ज्ञान 8 गव्युति के घन प्रमाण क्षेत्र में स्थित जीवों के मनोगत विषयों को जानता है, यानी वो जीव इतने क्षेत्र में है उनके मन के विषयों को वो जानते हैं। हाँ जान सकते, हाँ परंतु वर्तमान में है, ऐसे सामने होनी ये बात नहीं है, वर्तमान में। तथा उत्कृष्ट मोरे ज्ञान रुजुमति मनपरे ज्ञान आठ योजन के घन प्रमाण क्षेत्र में स्थित जीवों के मनोगत विषयों को जानता है। विपुल मति मन परे ज्ञान रुजु और अनरुजु मन, यानी रुजु को तो जानते ही जानते हैं, तो जो रुजु नहीं है उसको भी, जिसका हम कहते सरल नहीं है वक्र मन है, हाँ उसके लिए अनरुजु मन वचन तथा काय के भेद से 6 प्रकार का है। यानी रुजु के 3 प्रकार तो उसमें पाए जाते हैं, उसके ज्ञान का विषय है ही है, अनरुजु मन वचन काय का भी विषय को वे जानते हैं। इनमें से रुजु मन वचन और काय का अर्थ पहले कहे आए हैं, तथा संशय विपर्य और अनध्यवसाय रूप मन वचन और काय के व्यापार को ओन रुजु मन वचन और काय कहते हैं। हाँ यहाँ आधे चिंतवन या अचिंतवन का नाम अनध्यवसाय है। अभी यह अध्यवसाय संशय किसको कहे, उसी को अभी जो संशय विपर्य मन ये अध्यवसाय किसको कहना वो यहाँ बता रहे। अभी अब मैंने जो पढ़ा ना आधे चिंतवन या अचिंतवन, चिंतवन नहीं किया ऐसा जो है वो अनध्यवसाय होगा, या आधा ही चिंतवन किया, पूरे उसके मन में वो उस विषय संबंधी चिंतवन नहीं चला है, आधे चिंतवन या अचिंतवन, अचिंतवन ने उसका अर्थ किया वो भविष्य में भी करेगा चिंतन। पहले रुजुमति वाले अभी वर्तमान में वो चिंतवन कर रहा है ऐसा जीव लिया है, और उसमें अचिंतवन वाले को नहीं या आधे चिंतवन वाले को नहीं लिया है, जो वर्तमान में चिंतवन कर रहा है ऐसा जीव लिया है। दोलायमान प्रत्यय का नाम संशय है, और विपरीत चिंतवन का नाम विपर्य है। विपुलमति वर्तमान में चिंतवन कहे गए विषय को तो जानता ही है, पर चिंतवन करके भूले हुए विषय को भी जानता है। पहले चिंतवन किया था मगर वो भी भूल गया था अभी वो चीज। जैसे आपको अभी कोई विशिष्ट शंका है किसी पदार्थ के बारे में, आप चिंतवन कर रहे हैं, वो तो रुजुमति जानता है, वो तो सरल है ना, अभी वर्तमान में चिंतवन चल रहा है। परंतु आपने 10 साल पूर्व किसी विषय के बारे में चिंतवन किया था और वो आप भी भूल गए कि मैंने इसके बारे में चिंतवन किया था। हाँ, फिर भी वे जानते हैं। तो चिंतवन करके भूले हुए विषय को भी जानता है, जिसका आगे चिंतवन किया जाएगा उसे भी जानता है, भविष्य काल में वो चिंतवन करेगा उसको भी अभी से जानते हैं। यह विपुलमति मन परे ज्ञानी मति ज्ञान से दूसरे के मानस को अथवा मति ज्ञान के विषय को ग्रहण करके अनंतर ही मन परे ज्ञान से जानता है। यह मति ज्ञान पूर्वक ही मन परे ज्ञान होता है। जब हम दर्शन की बात सीखते हैं तो प्रश्न आता है, मति ज्ञान तो दर्शनोपयोग पूर्वक होता है, अवधि ज्ञान भी दर्शनोपयोग पूर्वक होता है, केवल ज्ञान भी दर्शनोपयोग पूर्वक होता है। केवल दर्शन पूर्वक नहीं, उसके साथ होता है, मुझे साथ कहना था। हाँ, यानी उसके लिए भी वो दर्शन केवल दर्शन है वहां पर, अवधि दर्शन, केवल दर्शन और मति ज्ञान के पहले होना है, चक्षु चक्षु दर्शन तो बताया है। परंतु श्रुत ज्ञान के लिए और मन परे ज्ञान के लिए अलग सा दर्शन क्यों नहीं कहा? तो वहां ये मति ज्ञान पूर्वक मन परे ज्ञान होता है और उस मति ज्ञान के पहले दर्शन होता है। हाँ, हमने तो ऐसे पढ़ा था ना। हाँ, ये वक्र के बदले अनुजु जिसको कहा, संशय विपर्य और अनध्यवसाय वाले को अनुजु कहा, वो ज्ञान की बात है। यहाँ मन नहीं, नहीं नहीं, चिंतवन के बारे में उसका है लगाना। ये व्यापार के लिए ये तीन शब्द लगाए, मन के व्यापार के लिए, वचन के व्यापार के लिए और काय के व्यापार के लिए। तो मन के व्यापार में संशय विपर्य अनध्यवसाय लगाना। मन के व्यापार यानी चिंतवन के बारे में, बोलने के बारे में। ये अकेले ज्ञान पर वो लगाना नहीं है, ये संशय विपर्य और अनध्यवसान वो ज्ञान पर लगाया और यह मनोवचन काय के व्यापार पर लगाया। कहाँ जो पढ़ा था उसकी बात करें? हाँ, अन्यथा ऐसे रहित व्यक्त मन वाले जीवन से, वो व्यक्त मन की बात है। व्यक्त मन यानी जिसके मन के व्यापार को लगाना, सामने वाले जीव की बात है ये। हाँ, वो मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है ना, कोई भी हो सकता है। वो सामने वाला जीव क्या सोच रहा है उसकी बात है, ज्ञान में नहीं लगाना, चिंतवन के बारे में। उसका चिंतवन कैसे चल रहा है, यानी वो तो अभी मैंने चाबी कहाँ खो रखी, ये तो भूल गया है, या उसके बारे में वो तो सोच रहा है, याद करने की कोशिश कर रहा है कि मैंने चाबी कहाँ रखी है। अब क्या समय दृष्टि को ऐसा नहीं संशय वगैरह, मैंने कहा मैंने तो अभी हाथ में पकड़ी थी, कहाँ रखी। तो ये उसका चिंतवन जो है उसके बारे में, उसका जो मन का व्यापार है उसमें लगाना है। ये व्यापार के बारे में बताया तो उन्होंने डेफिनेशन भी बताया, आधा चिंतवन या अचिंतवन को अनध्यवसान कहा था और दोलायमान प्रत्यय का नाम संशय कहा था और विपरीत चिंतवन कर रहा है। चिंतवन के बारे में है। हाँ, ये आत्मा संबंधी या अन्य सात तत्व संबंधी उसकी बात यहाँ नहीं लेनी है, रूपी पदार्थ के बारे में जो उसका चिंतवन चल रहा है उसकी बात है यहाँ पर। नहीं नहीं, उसकी तो बात ही नहीं है। हाँ, सामने वाले जीव के बारे में। हाँ, तो ये बात यहाँ बता दी कि पहले मति ज्ञान से सामने वाले जीव के मन को जान लेते हैं और फिर मन परिज्ञान वो प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा उस विषय को जानते हैं। काल की अपेक्षा, अभी इसका मर्यादा बता रहे, काल की अपेक्षा जघन्य रूप से सात आठ भव, ये विपुल मति की बात चल रही है। हमने जघन्य रूप से दो तीन भव देखा था रुझुमति में, और इनका जघन्य सात आठ भव है। जो उनका उत्कृष्ट है वो इनके लिए जघन्य है, और उत्कृष्ट रूप से असंख्यात भवों की गतियों और अगतियों को जानता है। गति अगति नहीं, उसमें से हा? नहीं नहीं, आगे पीछे आगे के सब गति अगति नहीं, वो तो कहाँ से कहाँ जाता है, गमन वगैरह, गमन आगमन वगैरह। गतियों को और अगतियों को जानते, गति अगति है इसमें भी आया था ना, अपने विषय आता है गति अगति, यानी कहाँ से मरकर कहाँ जाता है वगैरह, उसको ये गति अगति कहते हैं। हाँ, यानी असंख्यात भवों को जानता है। क्षेत्र की अपेक्षा जघन्य रूप से योजन पृथक्व, जो उसका उत्कृष्ट था, योजन पृथक्व लिखा था उसमें, जघन्य गव्युति पृथक्व लिखा है, और उत्कृष्ट रूप से मानुषोत्तर पर्वत के भीतर स्थित जीवों के मनोगत विषयों को जानता है। कौन सा? अने असंख्यात भवन तक जानता है। अभी आगे पढ़ेंगे पूरा। मानुषोत्तर पर्वत यहाँ 45 लाख योजन का उपलक्षण है। मानुषोत्तर पर्वत कहने से वो 45 करना, मानुषोत्तर कहने से उसकी यानी उसका डायमेंशन कितना है, यहाँ से कितना दूर है, या उसमें कितना बीच में उसके डायमीटर कितना है, मानुषोत्तर पर्वत के बीच में डायमीटर कितना है, ये उसका उपलक्षण है। 45 लाख योजन कहने के बदले मानुषोत्तर पर्वत कह दिया, उपलक्षण है। इसलिए यह अभिप्राय हुआ कि, ये अभिप्राय बता रहे, इस ज्ञान का उत्कृष्ट क्षेत्र 45 लाख योजन है, जो मानुषोत्तर पर्वत के बाहर भी हो सकता है। धवला टीका के इस कथन के अनुसार जो उत्कृष्ट मनपरे ज्ञानी मानुषोत्तर पर्वत और मेरु पर्वत के मध्य में मेरु पर्वत से जितनी दूर स्थित होगा, उस ओर उसी क्रम से उसका क्षेत्र मानुषोत्तर पर्वत के बाहर बढ़ जाएगा, और दूसरी ओर उस मनपरे ज्ञानी के क्षेत्र से मानुषोत्तर पर्वत उतना ही दूर रह जाएगा। यहाँ कहना ये बात चाहते हैं कि जहाँ वे स्थित है वहाँ से 45 लाख योजन के हमने जो पढ़ा था, 45 लाख योजन के जो स्क्वायर होगा, मानुषोत्तर पर्वत तो गोल है और बाहर जो चार कोण रहेंगे वहाँ भी कोई देव और तिर्यंच स्थित है, तो उनके मन की भी बातें जानेंगे। यहाँ तो स्पष्ट बताया जहाँ पर स्थित है, अभी ये सेंटर है, यहाँ पर मेरु पर्वत है, और मान लेते हैं यहाँ पर ये मानुषोत्तर पर्वत है यहाँ, और यहाँ बीच में है, तो जहाँ स्थित है वहाँ से 45 लाख योजन का डायमीटर लेना, बाहर जाएगा और मेरु के उस बाजू से उतने अंदर आएगा। जहाँ पर स्थित है वहाँ से लेना, बाहर मनुष्य नहीं है परंतु तिर्यंच देवों के मन की बात भी जानेंगे। हाँ, देव तिर्यंच तो वहाँ भी, देव तो वहाँ है ही, व्यंतर भी रहते हैं और देवों का आगमन भी वहाँ होता है, और तिर्यंच तो स्थित है ही है वहाँ पर, तो उनके मन की भी बातें जानेंगे। इन्होंने बताया था ना, धवला टीका, धवलाकार ही है, जय धवलाकार और धवलाकार एक ही है ना वीरसेनाचार्य। हाँ फूलचंद जी, विशेषार्थ अभी हमने देखा था ना, विशेषार्थ की बात है कि जो उन्होंने उस टीका में से उद्धृत की है। सोचेगा वो भी, वो भी जाने नहीं, यह जीव आगे के आठ भव के बाद क्या सोचेगा वो भी जानेंगे। सात आठ भव में क्या उसका ही अर्थ वही होता है ना, सात आठ भव का अर्थ ही क्या है, वो सामने वाले जीव के सात आठ भव लेना है, वो तो उत्कृष्ट रहते, उत्कृष्ट असंख्यात भव बताए। अब केवल ज्ञान की बात करेंगे यहाँ पर श्रुतक, सर्वांग यहाँ तो कुछ उसकी बात लिखी नहीं है, परंतु मुझे याद है ये जो आठ पांखुड़ी वाला जो कमल बताया ना मन, उसके टिप्स वहां से इसका एक सूक्ष्म पाया जाता है, वहां से जानने का कार्य होता है। असहाय ज्ञान को केवल ज्ञान कहते हैं, असहाय ने जिसको किसी सहाय की जरूरत नहीं है उसको असहाय कहते हैं। हम तो लौकिक में असहाय ने जो दीन दुबला बिचारा है उसको असहाय, क्योंकि वह इंद्रिय प्रकाश और मनस्कार अर्थात मनोव्यापार की अपेक्षा से रहित होता है। ऊपर क्या लिखा है, मनस्कार निरपेक्षत्व इंद्रिय आलोक, कल बात आई थी ना आलोक, मैंने पूछा था आपको, हाँ अपेक्षा रहित। हमारा भी जो ज्ञान है वो इंद्रियों से नहीं होता, परंतु वहां उसकी अपेक्षा रहती है, निमित्त रहता है। शंका, केवल ज्ञान आत्मा की सहायता से होता है, इसलिए उसे केवल अर्थात असहाय नहीं कह सकते। उसका समाधान, नहीं, क्योंकि ज्ञान से भिन्न आत्मा नहीं पाया जाता, इसलिए केवल ज्ञान को केवल अर्थात असहाय कहने में कोई आपत्ति नहीं है। ये था के ऊपर बिंदी आ गई। शंका, केवल ज्ञान अर्थ की सहायता लेकर प्रवृत्त होता है, इसलिए उसे केवल अर्थात असहाय नहीं कह सकते। क्या कहते हैं, अर्थ की पदार्थों को जान रहे हैं ना, तो उसकी तो सहायता ले रहे हैं ना, ऐसा पूछते हैं। समाधान, नहीं, क्योंकि नष्ट हुए अतीत पदार्थों में तथा उत्पन्न न हुए अनागत पदार्थों में भी केवल ज्ञान की प्रवृत्ति पाई जाती है। कोई कहते ना अभी पदार्थ है इसलिए जानते हैं, नहीं, जो पदार्थ अभी नहीं है उनको भी जानते हैं ना, अनादि से अनंत काल तक की सभी पर्यायों को जानते हैं। इसलिए केवल ज्ञान अर्थ की सहायता से होता है यह नहीं कहा जा सकता। शंका, यदि असत पदार्थ में केवल ज्ञान की प्रवृत्ति होती है तो खर विषाण में भी उसकी प्रवृत्ति हो, जो पदार्थ है नहीं उसको जानता है, तो ये तो खर विषाण समझते हैं, ससले को खर नहीं कहते, खर किसको कहते हैं, गधे को कहते हैं, अरे मराठी शब्द है मालूम नहीं, खर विषाण यानी सिंह, गधे का सिंह। जब ससले के लिए आता है वो तो शश विषाण लिखते हैं, ये खर विषाण लिखा है ना, खर विषाण। समाधान, नहीं, क्योंकि खर विषाण का जिस प्रकार वर्तमान में सत्व नहीं पाया जाता है उसी प्रकार उसका भूत शक्ति और भविष्य शक्ति रूप से भी सत्व नहीं पाया जाता। क्या कहते हैं, गधे को ना वर्तमान में ही सिंह है और ना ही भूतकाल में या भविष्य काल में शक्ति की अपेक्षा उसके ने कभी थे भी नहीं और कभी होगे भी नहीं, परंतु ये द्रव्य की जो पर्याय है वो तो हो चुकी और होने वाली है, अर्थात जैसे वर्तमान पदार्थ में उसकी अतीत पर्यायें जो कि पहले हो चुकी है भूत शक्ति रूप से विद्यमान है। देखो पदार्थ हम किसको कहते हैं, द्रव्य जो है भूत शक्ति रूप से विद्यमान है, और अनागत पर्यायें जो कि आगे होने वाली है वे भविष्यत शक्ति रूप से विद्यमान है की बात है ना। और जो शक्ति रूप से है उसको केवल ज्ञानी जानते हैं, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य की अपनी अपनी अनादि से लेकर अनंत काल तक एक एक समय की पर्याय सुनिश्चित है, और ऐसी योग्यता रूप धर्म उस द्रव्य में ही विद्यमान है, और द्रव्य ही अपने निज शक्ति से उस समय उस पर्याय रूप से परिणमित होता है। तो ये अनादि अनंत पर्यायों के समूह को ही हम द्रव्य कहेंगे। गुण पर्यायवत द्रव्यम जब कहते हैं तो गुण तो है ही है सभी वर्तमान में, परंतु उसकी सुनिश्चित पर्याय है, तभी तो हम अनादि अनंत कहने का मतलब ही है कि केवल ज्ञानी जिसको जानते हैं, क्योंकि वो द्रव्य की अपनी शक्ति है वहां पर ही इसको जानते हैं, नहीं है उसको जानते ये बात नहीं है। शंकाकार ने जो शंका उठाई है, जो असत वस्तु को जानता है उसको हम कैसे सच्चा कहेंगे। देखो उस तरह खण विषाण हुआ है, खर विषाण गधे का सिंह यदि पहले कभी हो चुका होता तो भूत शक्ति रूप से उसकी सत्ता किसी पदार्थ में विद्यमान होती, अथवा वह आगे होने वाला होता तो भविष्यत शक्ति रूप से उसकी सत्ता किसी पदार्थ में विद्यमान रहती। यानी होने वाली पर्यायों की भी सत्ता भविष्य योग्यता रूप से द्रव्य में विद्यमान रहती है, तो वो सुनिश्चित होगी तभी हम कहेंगे ना उसकी सत्ता है। परंतु खर विषाण न तो कभी हुआ है और न कभी होगा, अतः उसमें केवल ज्ञान की प्रवृत्ति नहीं होती है। शंका, जबकि अर्थ में भूत पर्याय और भविष्यत पर्याय भी शक्ति रूप से विद्यमान रहती है, तो केवल वर्तमान पर्यायों को ही अर्थ क्यों कहा जाता है? समाधान, नहीं, क्योंकि जो जाना जाता है उसे अर्थ कहते हैं। इस व्युत्पत्ति के अनुसार वर्तमान पर्यायों में ही अर्थपना पाया जाता है। वो व्युत्पत्ति हुआ, व्युत्पत्ति करना। यह व्युत्पत्त्यर्थ यानी व्युत्पत्ति अर्थ अनागत और अतीत पर्यायों में भी समान है। शंका पूछ रहे हैं, अर्थात जिस प्रकार पूर्व में कही गई व्युत्पत्ति के अनुसार वर्तमान पर्यायों में अर्थपना पाया जाता है, उसी प्रकार अनागत और अतीत पर्यायों में भी अर्थपना संभव है, क्योंकि उसको भी जाना जाता है ना, तो उसको भी अर्थ कहेंगे। समाधान, नहीं, क्योंकि अनागत और अतीत पर्यायों का ग्रहण वर्तमान अर्थ के ग्रहण पूर्वक होता है। वर्तमान में हम जो द्रव्य को जानेंगे उसके ग्रहण पूर्वक उन पर्यायों का ग्रहण होता है, उस द्रव्य में उसकी सत्ता है, इसलिए वर्तमान द्रव्य को जानेंगे अर्थ को जानेंगे तो उसमें उसकी सत्ता विद्यमान है। अर्थात अतीत और अनागत पर्याय भूत शक्ति और भविष्य शक्ति रूप से वर्तमान अर्थ में ही विद्यमान रहती है। यानी जो द्रव्य वर्तमान में है उसी के आधार से उसकी भूत शक्ति और भविष्य शक्ति भी है, अतः उनका ग्रहण वर्तमान अर्थ के ग्रहण पूर्वक ही हो सकता है, इसलिए उन्हें अर्थ यह संज्ञा नहीं दी जा सकती। अकेले पर्यायों को यहाँ अर्थ नहीं कहा है, वर्तमान पदार्थ जो है अर्थ है, जिसके आधार से भूत और भविष्य की शक्ति रूप पर्याय हैं। अथवा केवल ज्ञान आत्मा और अर्थ से अतिरिक्त किसी इंद्रियादिक सहाय की अपेक्षा रहित है, इसलिए भी वह केवल अर्थात असहाय है। इस प्रकार केवल अर्थात असहाय जो ज्ञान है उसे केवल ज्ञान समझना चाहिए। केवल का अर्थ है उन्होंने असहाय किया। विशेषार्थ, वर्तमान वर्तमान में ही जानते हैं, परंतु वो किसकी है पर्याय? खाली पर्याय ऐसा थोड़ी जान रहे, वो इस द्रव्य की ये पर्याय ऐसा जान रहे, इसलिए वर्तमान द्रव्य की अपेक्षा है ना। वहां पर हम कहेंगे ये जो पुद्गल ये स्कंद दिख रहा है ये प्लास्टिक का, तभी इसके एक एक परमाणु में उसकी अनादि अनंत पर्याय विद्यमान, उसकी शक्ति रूप से विद्यमान है। ये वर्तमान इस द्रव्य के आधार से हम बात करें ना, इसकी भूतकाल की पर्याय और इसकी भविष्यकाल की पर्याय, इसलिए वर्तमान अर्थ की अपेक्षा है वहां पर, ये बात यहां बताते हैं। केवल ज्ञानी भी प्रत्येक द्रव्य के अनादि अनंत पर्याय जान रहे हैं, तो उसमें भी वो द्रव्य है ना वहां पर, क्योंकि उन पर्यायों का समूह तो द्रव्य है, तो सभी द्रव्यों को जान रहे हैं, उनके गुणों को जान रहे हैं, उनके सभी पर्यायों को जान रहे हैं। विशेषार्थ, अभी ये विशेषार्थ में और बताएंगे। बौद्ध ज्ञान की उत्पत्ति में चार प्रत्यय मानते हैं, समानांतर प्रत्यय, अधिपति प्रत्यय, सहकारी प्रत्यय और आलंबन प्रत्यय। घट ज्ञान की उत्पत्ति में पूर्व ज्ञान समानांतर प्रत्यय होता है, इसी पूर्व ज्ञान को मन कहते हैं, तथा मन के व्यापार को मनस्कार कहते हैं। तात्पर्य है, मनस्कार यानी पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान की उत्पत्ति में समानांतर प्रत्यय अर्थात उपादान कारण हो जाता है, और इंद्रिया अधिपति प्रत्यय होती है, उसका कारण प्रत्यय ने कारण। यद्यपि घट ज्ञान चक्षु पदार्थ और प्रकाश आदि अनेक हेतुओं से उत्पन्न होता है, पर उसे चाक्षुष प्रत्यक्ष ही कहते हैं, क्योंकि चक्षु इंद्रिय उसका ज्ञान का अधिपति यानी स्वामी है, अतः इंद्रियों को अधिपति प्रत्यय कहते हैं। उसका अधिपत्य किसके है, तो वो इंद्रिय उसका स्वामी कहते हैं, ये सारा बौद्ध मत बता रहे। प्रकाश आदि सहकारी कारण है, पदार्थ आलंबन कारण है, क्योंकि पदार्थ का आलंबन लेकर ही ज्ञान उत्पन्न होता है, ये ज्ञेय से ही ज्ञान होता है मानने वाले है, ये बौद्ध मत है। इस प्रकार बौद्ध धर्म में चित्त और चैतसिक की उत्पत्ति में चार प्रत्यय स्वीकार किए गए हैं। इसी प्रकार नैयायिक और वैशेषिक दर्शनों में भी ज्ञान की उत्पत्ति में आत्म मन संयोग, मन इंद्रिय संयोग और इंद्रिय अर्थ संयोग को कारण माना है। उनकी दृष्टि से भी ज्ञान की उत्पत्ति में आत्मा मन इंद्रिय और पदार्थ कारण होते हैं। केवल ज्ञान को केवल अर्थात असहाय सिद्ध करते समय यहां इन चार कारणों की सहायता का निषेध किया है, और यह बतलाया है कि केवल ज्ञान इंद्रिय आलोक मनस्कार और अर्थ इनमें से किसी भी प्रत्यय की अपेक्षा नहीं करता। आत्मा ज्ञाता है तथा अर्थ ज्ञेय है, इसलिए अर्थ कथनचित ज्ञेय रूप से तथा आत्मा ज्ञाता रूप से केवल ज्ञान में कारण मान भी लिए जाए तो भी कोई बाधा नहीं है। यानी आत्मा को ज्ञाता कहेंगे और ज्ञेय पदार्थों को ज्ञेय कहेंगे, तो उसमें तो कोई बाधा नहीं आती, उससे ज्ञान होता है ये नहीं माना है, उसको ज्ञान का प्रत्यय ने कारण नहीं माना है। इसी अभिप्राय से आचार्य ने उपसंहार करते समय आत्मा और अर्थ से भिन्न इंद्रियादि कारणों की सहायता के निषेध पर ही जोर दिया है। अब आगे, इन पांचों ज्ञानों में अवधि और मनपर्य ये दोनों ज्ञान विकल प्रत्यक्ष है, यानी सकल नहीं है, पार्शल है, इसलिए विकल प्रत्यक्ष कहते हैं, क्योंकि पदार्थों के एक देश में अर्थात मूर्तिक पदार्थों की कुछ व्यंजन पर्यायों में स्पष्ट रूप से उनकी प्रवृत्ति देखी जाती है, वो भी व्यंजन पर्यायों में लिया। केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है, क्योंकि केवल ज्ञान त्रिकाल के विषयभूत समस्त द्रव्यों और उनकी समस्त पर्यायों को प्रत्यक्ष जानता है। वो सूत्र है सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य तथा मति और श्रुति, ये दोनों ज्ञान परोक्ष हैं, क्योंकि मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान में प्रायः अस्पष्टता देखी जाती है। इनमें भी श्रुति ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, क्योंकि मति ज्ञान के बिना श्रुति ज्ञान की उत्पत्ति नहीं पाई जाती है। इसका विशेषार्थ आगम में बताया है कि पांचों ज्ञानावरणों के क्षय से केवल ज्ञान प्रकट होता है, इससे निश्चित होता है कि आत्मा केवल ज्ञान स्वरूप है। तो भी ज्ञान पांच माने गए हैं। इसका कारण यह है कि केवल ज्ञानावरण कर्म केवल ज्ञान का पूरी तरह से घात नहीं कर सकता है। क्यों बताएं? आत्मा ज्ञान स्वरूप है ना, आत्मा केवल ज्ञान स्वरूप है, यानी आत्मा जो ज्ञान स्वरूप है उसी ज्ञान को केवल ज्ञान स्वरूप कहा। तो केवल ज्ञान आवरण कर्म का आवरण है, तो क्या आत्मा का संपूर्ण ज्ञान मिट जाता है? केवल ज्ञान आवरण का उदय चल रहा है, फिर भी हमारा मति ज्ञान श्रुति ज्ञान आदि चलते हैं, यानी ज्ञान पर पूरा आवरण, पूरे ज्ञान पर आवरण नहीं होता, ये बात यहां बताना चाहते हैं। क्योंकि ज्ञान का पूरी तरह से घात होने पर आत्मा को जड़त्व प्राप्त होता है, अतः केवल ज्ञानावरण से केवल ज्ञान के आवृत रहते हुए भी जो अतिमंद ज्ञान किरणें प्रस्फुटित होती है, अतिमंद उसकी अपेक्षा से केवल ज्ञानावरण से अभी पर्याय में केवल ज्ञान जिसको हम कहते हैं असहाय ज्ञान, वो तो प्रकट है ही नहीं है। केवल ज्ञान को तो उन्होंने प्रतिबंध किया, परंतु ज्ञान पूरी तरह से मिटा नहीं है। फिर भी तो कहते हैं अतिमंद ज्ञान किरणें प्रस्फुटित होती हैं, और उस अतिमंद किरणों को भी जो आवरण करता है, तो उसके नाम बताए मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, मनपरे ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण। तो उनके आवरण करने वाले कर्मों को आगम में मति ज्ञानावरण आदि कहा है, तथा उनके क्षोभशम से प्रकट होने वाले ज्ञानों को मति ज्ञान आदि कहा है। मूल में मूल आत्मा का स्वभाव केवल ज्ञान है, तो जैसा स्वभाव है वैसा पर्याय में प्रकट नहीं हो रहा है, हम निमित्त की भाषा में कहेंगे वहां केवल ज्ञानावरण कर्म का उदय चल रहा है, फिर भी उसका उदय ऐसा नहीं है कि ज्ञान को पूरा ही पूरा मिट जाए। हम देखते ना बादल आते फिर भी धुंधला सा ये दिन है या रात है इतना तो भेद कर सकते हैं, कितने भी घने बादल क्यों ना हो, दिन में तो रात जैसा अंधेरा नहीं हो रहा है ना, यानी वो तो सूर्य का अस्तित्व का भी ख्याल आता है। ऐसे ये थोड़ा सा ज्ञान तो चल रहा है, और उसमें ये मति ज्ञान आदि के भेद के, यानी वो धुंधले ज्ञान में भी हीनाधिकता होगी। हाँ क्षोभशम जो है ना, हाँ ज्ञान का स्वभाव पदार्थों को स्वतः प्रकाशित करना है, अतः चार क्षोभशमिक ज्ञानों में से जिन ज्ञानों का क्षोभशम की विशेषता के कारण यह धर्म प्रकट रहता है वे प्रत्यक्ष ज्ञान है। यानी इसमें से भी प्रत्यक्ष ज्ञान किसको कहेंगे हम? अवधि मनपरे को। प्रत्यक्ष है ना, उन ज्ञान का स्वभाव पर्याय पदार्थों को स्वतः प्रकाशित करना, स्वयं अपने से जाना। और जिन ज्ञानों का यह धर्म परसापेक्ष प्रकट होता है तो अपना उसका धर्म, परंतु वहां पर की अपेक्षा है, हम कहते ना इंद्रियों की अपेक्षा है, मन की अपेक्षा है, तो वे परोक्ष ज्ञान है। परोक्ष में पर शब्द का अर्थ इंद्रिय और मन है। इसलिए यह अभिप्राय हुआ जो ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता से प्रवृत्त होते हैं वे परोक्ष ज्ञान है। ऐसे ज्ञान मति और श्रुति ये दो ही है, क्योंकि अपने गेय के प्रति इनकी प्रवृत्ति प्रायः इंद्रिय और मन की सहायता से होती है। यद्यपि इन ज्ञानों की प्रवृत्ति में वो ग्रह दिख रहे हैं, इन ज्ञानों की प्रवृत्ति में आलोक आदि भी कारण पड़ते हैं, पर वे अव्यभिचारी कारण न होने से क्या कहते हैं? व्यभिचारी ने दोष और अव्यभिचारी ने निर्दोष, वो निर्दोष कारण नहीं हो सकते, क्योंकि हम आप तो प्रकाश में देखते हैं, परंतु बिल्ली और अन्य जो निशाचर प्राणी वो तो अंधेरे में भी देख सकते हैं। आउल है, अन्य भी है, यहाँ उनका ग्रहण नहीं किया गया। जैसे इंद्रियों को ग्रहण किया मन को, वैसे उनको आलोक को यहाँ उस पद्धति से नहीं ग्रहण किया। मति ज्ञान को जो साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा है, उसका कारण व्यवहार है। देखो, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष, ये प्रत्यक्ष तो है ही नहीं है, परंतु हम कह रहे हैं मैंने प्रत्यक्ष अपने आंखों से देखा है। व्यवहार में जिसको प्रत्यक्ष कहा जाता है उसको साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष है तो परोक्ष ज्ञान, परोक्ष ज्ञान का ये भेद है। कैसा? साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। क्यों कैसा कहते? इंद्रियों से जो जानना है मैंने अपने कानों से सुना, मैंने अपने आंखों से देखा, इसे हम कहते ना मैंने प्रत्यक्ष देखा, प्रत्यक्ष सुना, तो ये इस अपेक्षा से प्रत्यक्ष है। परंतु वो तो वहां इंद्रियों की अपेक्षा है, इसलिए वो सचमुच देखा जाए तो परोक्ष ज्ञान है। इसका कारण व्यवहार है। प्रत्यक्ष का लक्षण जो विशदता है, विशदता यानी स्पष्टता। प्रत्यक्ष का लक्षण क्या है? स्पष्टता। वह एक देश से मति ज्ञान में भी पाई जाती है। मति ज्ञान को साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष, ये प्र करना बराबर, मति ज्ञान को साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते समय जो ज्ञान पर अर्थात इंद्रिय और मन की सहायता से प्रवृत्त होते हैं वे परोक्ष है। परोक्ष के इस लक्षण की प्रधानता नहीं रहती है, किंतु वहां व्यवहार की प्रधानता हो जाती है। यानी जब हम प्रत्यक्ष और परोक्ष इसके डेफिनेशन करेंगे तो जहां इंद्रिय और मन की सहायता है वो परोक्ष ज्ञान है, ये बात होती है। और जब ये उसको साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं तो एक देश उसमें विशदता यानी स्पष्टता है, इसलिए उसको साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। अवधि ज्ञान आदि शेष तीन ज्ञान प्रत्यक्ष है। कौन कौन से? हाँ, अवधि मनपरे और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है, क्योंकि ये तीनों ज्ञान इंद्रिय आदि की सहायता के बिना स्वयं पदार्थों को जानने में समर्थ है। इनमें से अवधि ज्ञान और मनपरे ज्ञान एक देश प्रत्यक्ष है, क्योंकि इन ज्ञानों में मूर्तिक पदार्थ, ये लिमिटेशन आई ना, अमूर्तिक पदार्थों को नहीं लिया, मूर्तिक पदार्थ अपनी मर्यादित व्यंजन पर्यायों के साथ ही प्रतिभासित होते हैं। यानी सभी गुण पर्याय अर्थ पर्याय वहां प्रतिभासित नहीं होती है, कुछ व्यंजन पर्याय स्कंद रूप से जो है आदि। केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है। हाँ, देखो मन परे ज्ञान अवधि ज्ञान जो जानते ना, ये इतने बाद मरेगा वगैरह ऐसी जो बातें हैं, तो वहां उसके शरीर रूप स्कंद जो है असमान जाते, वो स्कंद नहीं रहेगा, परंतु वो जीव किसी अन्य शरीर के साथ जुड़ा हुआ वो उनके ज्ञान में आते। जीव अमूर्तिक है परंतु वो तो कर्मों से बंधा हुआ है ना, सर्वथा अमूर्तिक तो नहीं है वो, कर्म उसके वो स्कंद है, वो कथनचित मूर्तिक भी कहा है उसको, तो उस अपेक्षा वो जीव अभी मनुष्य रूप से है। वो पूर्व में तिर्यंच रूप गाय था, तो वो कह सकते ना ये गाय था। लंबे काल वाली चलने वाली ऐसे लेना उसमें। हाँ, और उसको भी ले सकते हैं प्रदेश तत्वगुण के आकार, यानी वो स्कंद रूप से अभी शरीर की जो कुछ बातें हैं या अन्य। हाँ, केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है क्योंकि वह त्रिकालवर्ती समस्त अर्थ पर्यायों, यहाँ अर्थ पर्याय को लिया देखो, यानी एक एक गुण के पर्याय को भी वो अलग अलग भिन्न भिन्न जानेंगे, और व्यंजन पर्यायों के साथ सभी पदार्थों को परनिरपेक्ष होकर स्पष्ट जानता है। परनिरपेक्ष ने वहां कोई अपेक्षा नहीं, किसकी, वो पदार्थ सामने ही चाहिए, दूर होना नहीं चाहिए, ऐसी बातें कोई नहीं है उसमें, कोई काल की क्षेत्र की कोई मर्यादा नहीं है, और ना ही कोई इंद्रिया प्रकाश आदि की अपेक्षा है, इसलिए परनिरपेक्ष कहा है। 16 नंबर का जो है उसकी टीका के विशेषार्थ क्या, 16 नंबर में जो लिखा है पांच उसके ऊपर। हाँ, देखो यहाँ ये 16 नंबर के ऊपर जो चौथी लाइन है, आत्मा ज्ञाता है तथा अर्थ ज्ञेय है, यानी आत्मा जानने वाला है, अर्थ यानी पदार्थ उसके ज्ञेय है, इसलिए अर्थ कथनचित ज्ञेय रूप से। देखो इसके लिए जो है, एक कहां से आ लिया, हाँ हाँ उसी में बताना चाहती, उसकी बात नहीं है, ये गेय रूप से उसको रख सकते हैं। देखो यहाँ कथनचित क्यों लिखा है, पहले में पहले क्या कहा था, देखो ये शंका समाधान जो लिखी थी यहाँ पर 20 पृष्ठ पर, ये विशेषार्थ के नीचे से तीसरी लाइन, नीचे के विशेषार्थ के ऊपर तीसरी लाइन, अथवा के पहले पहले क्या बताया, केवल ज्ञान परम निरपेक्ष है, उसको ना इंद्रियों की अपेक्षा है, ना आलोक की है, ना गेयों की पदार्थों की भी नहीं है, ऐसा कहा था। तो प्रश्न पूछा था आत्मा की सहायता से जानता है ना, तो आत्मा की सहायता से जानता है और सामने गेय है इसलिए पदार्थों की भी अपेक्षा है, तो उसको आत्मा की भी अपेक्षा है और पदार्थों की भी अपेक्षा है। तो कहते आत्मा और ज्ञान कोई भिन्न तो है नहीं है, तो आत्मा की अपेक्षा है ऐसा कहना ये तो कोई बात नहीं है। हाँ, उसी बात को यहाँ कह रहे हैं कि अर्थों को गेय रूप से, हाँ गेय उसमें निमित्त है, वो कह सकते एक अपेक्षा से। आत्मा स्वयं अपनी शक्ति से जानता है, गेय से जानना नहीं होता है, परंतु गेय वहां है। तो यहां क्या कहते, देखो आत्मा ज्ञाता है तथा अर्थ गेय है, इसलिए अर्थ कथनचित गेय रूप से और आत्मा ज्ञान रूप से, ज्ञाता रूप से, केवल ज्ञान में कारण मान लेने पर भी कोई बाधा नहीं है, यानी पदार्थों को गेय रूप से कारण मानने में कोई दोष नहीं है और आत्मा को ज्ञाता रूप से कारण मानने में कोई दोष नहीं है, ये बात यहाँ बताना चाहते हैं। क्योंकि शंका समाधान में उसने पूछा था, अरे आत्मा की तो सहायता है, गेय की तो सहायता है, कहते उनसे कोई सहायता नहीं है, वो बस गेय है, इतनी ही बात है। ज्ञान अपनी शक्ति से स्वयं में रहते हुए पदार्थों को जाने, ऐसी उसकी अपनी शक्ति है, उसका अपना, उसको स्वच्छत्व कहेंगे, प्रकाशत्व कहेंगे, वो उसमें अपने में वो शक्ति है, वो सामने है इसलिए जाना ये बात नहीं है, फिर भी वो गेय है इतना उसका स्वीकार हो सकता है और आत्मा ज्ञाता है ऐसा हम कह सकते हैं। स्कंदों के भी पर्याय ले, क्योंकि मन में स्थित विषय को भी लेना है ना, तो उन पुद्गलों की पर्यायों को भी ले सकते हैं, उसकी व्यंजन पर्याय स्थूल, उसके जो अभी जो स्कंद रूप है उसको व्यंजन पर्याय भी कहेंगे, वो भी समान जाति पर्याय हो गई ना, वो तो जैसे हम असमान जाति को लेते हैं वैसे पुद्गलों के जो समान जाति पर्याय हो गए, अनेक द्रव्यों की मिली जुली। जैसे हम कहेंगे ये पेन है, तो पेन रूप से अभी वो तो लंबे काल तक अभी स्थित है, तो ये कब नष्ट होगा? तो कहेंगे तो 4 दिन के बाद ये जल जाएगा। ये जो कुछ है ये श्रुत ज्ञान को अलग रखा था, वो अभी उसकी बात करेंगे। क्यों? क्योंकि पहले नंबर की गाथा सूत्र में एक ज्ञान प्रवाद से ओरिजिन है ये बात आई थी, इसलिए पहले में पहले अन्य ज्ञानों की बात करके अब श्रुत ज्ञान की बात उठा रहे हैं। श्रुत ज्ञान 2 प्रकार का होता है, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। उनमें से अंग बाह्य 14 प्रकार का है। अंग बाह्य का दूसरा नाम याद है, प्रकीर्णक कहते हैं, 14 प्रकीर्णक। ये अंग किसको कहना और बाह्य किसको कहना, अंग बाह्य क्या उसके लिए क्या क्राइटेरिया क्या था? हाँ हाँ बोलो। हाँ अपुनरुक्त अक्षर। हाँ तो नहीं बराबर है, ये भी अक्षरों से ये भी बने हैं और अक्षरों से। हाँ हाँ देखो क्या कहना चाहते हैं अरविंद भाई, समझ में आए? उनके तो शॉर्ट में होता है सब। हाँ पूरे द्वादशांग वाणी के जो पूरे जो कुछ है श्रुत ज्ञान, अपुनरुक्त अक्षर कितने हैं? अपुनरुक्त का अर्थ होता है ये जो हमने व्यंजन है स्वर है और सबके कॉम्बिनेशन अलग अलग अगर रखेंगे तो 64 होते हैं, और फिर उनके कॉम्बिनेशंस सिंगल सिंगल रखेंगे, 2 का संयोग 3 का संयोग 4 का संयोग ऐसे 64 के संयोग तक कितने संयोग हो सकते हैं। जैसे ए बी सी हमने 3 बातें ली तो उसमें संयोग कितने होते हैं, ए को एक बार रखेंगे, बी को, सी को, फिर ए बी को रखेंगे, ए सी को रखेंगे, बी सी को रखेंगे, पहले 3 ये 3 6 हो गए और सबको एक साथ एक और एक भंग होगा तो 7 भंग हो जाएंगे। हमेशा हम सप्तभंगी लगाते हैं ना, तो 3 चीजें होती है तो वहां 7 भंग ही लगेंगे, 4 चीजें होती है तो कितने भंग लगेंगे अश्विन भाई? हाँ हिसाब करो। हाँ हाँ -1 कितने, 15 हो गए। कैसे निकाला? जितने हैं ना जितने के भंग करने, 3 के हैं, 2 गुना 2 गुना 2 8 होते हैं, 8 में एक माइनस करो तो 7 भंग ही होंगे, कम ज्यादा नहीं होंगे। 4 चीजें ए बी सी डी रखेंगे तो उसके भंग कितने होंगे, उसमें एक एक सिंगल को रखो, 2 2 को रखो, 3 3 को रखो और 4ों को एक साथ रखो तो सब मिलके उसके 15 भंग हो गए। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और -1 ऐसे हम यहाँ हमारे पास 64 अक्षर है, 64 बार 2 को रखो और आपस में गुणा करो, 2 × 2 × 2 × 2 64 कितनी संख्या आएगी? हाँ पनट्ठी आएगी, इकट्ठी सॉरी पनट्ठी नहीं, पनट्ठी तो 65,000 होते, इकट्ठी 6 बार 2 को रखा है ना, इकट्ठी उसमें से एक कम करो, इतने तो भंग हो जाएंगे, इतने अक्षर है। इन अक्षरों में से अंग भी बने हैं और अंग बाह्य भी बने हैं, तो अंग कितने बने हैं? तो उसके लिए जो पद है, एक हमारे पास माप लेना ना, हमारे पास बहुत सारे चावल है और हमने कटोरी से मापे तो उसमें तो 14 कटोरी तो ऐसे निकाली, फिर बाद में इतने चावल रहे कि वो पूरी कटोरी नहीं भरी तो क्या करेंगे, उसमें से हमने चम्मच से करेंगे हा? तो उसमें 14 चम्मच हो जाएगी हमारे। वैसे जितने अक्षर है पहले पद नाम की जो संख्या है उससे भाग दिया और जो फुल फिगर आ गई पूर्णांक उसमें से तो अंग बने, और जो पूरे पद जितने अक्षर नहीं रहे कम रहे उनमें से ये 14 प्रकीर्णक बने। तो एक पद के अक्षर कितने याद है? हाँ 1634,83,07,888 इतने अक्षरों का एक पद, और ऐसे एक पद इतनी संख्या से हम वो इकट्ठे माइनस एक को भाग देंगे तो उसमें से कितने वो सारे पद सब मिलकर 112 करोड़ आते हैं ना, कुछ 12 अंगों के पद इतने होते हैं, और जो बाकी संख्या रही वो पद से भी कम रही तो उसमें से ये 14 प्रकीर्णक बने, उसको अंग बाह्य कहते हैं। देखो अभी हम पढ़ेंगे इसको। श्रुत ज्ञान 2 प्रकार का होता है, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट, अंग प्रविष्ट ने अंग में जो इंक्लूडेड है वो अंग प्रविष्ट, और जो अंग में नहीं है अन्य जो है अंग के अलावा जो रचना है उसको अंग बाह्य कहते हैं। उनमें से अंग बाह्य 14 प्रकार का है, ये इसके 14 नाम है। सामायिक, यहाँ सामयिक लिखा है परंतु सामायिक हमने अभी तक पढ़ा था। चतुर्विंशति स्तव, वो वी के ऊपर भी बिंदी देना। वंदना, प्रतिक्रमण, वैनयिक, कृतिकर्म, दशवैकालिक, उत्तराध्ययन, कल्प्य व्यवहार, कल्प्याकल्प्य, महाकल्प्य, पुंडरिक, महापुंडरिक और निषिद्धिका। इनके विषय को जानकर कथन करना चाहिए। अभी यहाँ बहुत विस्तार से नहीं लिया है, परंतु जीव कांड में हमने इस ज्ञान मार्गणा में बहुत विस्तार से इसका स्वरूप देखा था। अभी 18 नंबर, हाँ याद नहीं, ठीक है, मगर देखा था उतना तो याद है। हाँ हम कह, हाँ पढ़ते हैं तो पुरानी याद आती है कि हाँ हमने पढ़ा था, सुना था कुछ। आप ज्ञान मार्गणा के विषय में आए थे ना पहले में पहले। हाँ प्रेरणा बेन को डर लगा था ये भाग जाएंगे, इतना विषय चल रहा है, गहन चल रहा है। हाँ धवला में भी आया था। देखो अंग प्रविष्ट 12 प्रकार का है, यानी ये 12 अंगों के नाम है। अभी आचार, यानी हम इसको कैसे कहते हैं, आचारांग। सूत्रकृत यानी सूत्रकृतांग, स्थान यानी स्थानांग, समवाय समवायांग, व्याख्या प्रज्ञप्ति अंग पांचवा, छठा नाथ धर्म कथा। इसका दूसरा नाम याद है किसी को? नाथ धर्म कथा कहो या ज्ञातृ धर्म कथा कहो, एक ही बात। सातवा उपासकाध्ययन अंग, आठवा अंतकृत दश अंग। ये अंतकृत केवली होते ना, दस दस प्रत्येक तीर्थंकर के काल में दस दस अंतकृत केवली होते, वो उपसर्ग वाले वगैरह, तो उनकी ये इसमें वर्णन आता है, ये अंतकृत दशा। नौवा अनुत्तरोपपादिक दश, आगे अंग लगाना शब्द, अनुत्तर और उपपादिक, अनुत्तरों में जन्मने वाले वो भी दस दस होते हैं, यानी वो उपसर्ग होते हैं, वो उपशम श्रेणी में मरते वगैरह, वो अनुत्तर में जाके उत्पन्न होते हैं मुनिराज, उनको उनका वर्णन इसमें है, वो अनुत्तर उपपाद दशांग उसका नाम है, अंग का नाम है। समवाय में पांच समवाय नहीं होते, समवाय ने जो समान जो बातें होती है उसको, जैसे जैसे जम्बूद्वीप कितना है, लाख योजन का, लाख योजन का और क्या क्या है, पैतालीस लाख योजन का क्या है, तुम कहेंगे हाँ सिद्ध शिला है, हाँ मनुष्य लोक है 45 लाख योजन का, और नीचे में सीमंतक बिल जो है बीच वाला, हाँ और ऊपर का स्वर्ग का भी बीच वाला जो अवधि नाम का भी, हाँ सरबार वो तो 1 लाख, हाँ 45 लाख होता है। फिर 1 लाख का क्या है, तो 1 लाख का जम्बूद्वीप है, और नीचे के जो अवधि नाम का बिल होगा, मैं सातवें नरक का एक सेंटर का बिल, सेंटर का जो है ना, और ऐसे ये समानता किसमें किसमें है उसको ये समवाय कहेंगे। वो तो जो कोई समानता की बात जहाँ है उसकी बात वहां बताएंगे। अभी 10 नंबर का प्रश्न व्याकरण, 11वें में विपाक सूत्र यानी विपाक सूत्रांग, और 12वां है दृष्टिवाद। इन 12 अंगों के विषय का प्ररूपण कर लेना चाहिए। पढ़ेंगे, हाँ इसमें तो नहीं दिया है, नहीं हाँ उसकी डिटेल चलेंगे। आपके सामने पुस्तक नहीं होगी, अगर मैं अकेली पढ़ूंगा तो आप पढ़ना है तो ले लेंगे। ये समय ज्ञान चंद्रिका निकालो, अभी तो 5 मिनट बाकी है। हाँ कल इसको ले लेंगे, सभी का विषय ले लेंगे। हाँ देखो उसमें से पूर्वगत 14 प्रकार का नहीं, उसके ऊपर 19 नंबर दृष्टिवाद 5 प्रकार का है, हमने कल भी देखा था उसको। परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वगत और चूलिका। इन 5 अधिकारों के विषय का प्ररूपण जानकर कर लेना चाहिए। इसमें भी वो बहुत सारी डिटेल्स है ना, चूलिका भी 5 प्रकार की होती है, तो उसकी भी विषय अलग अलग है, उसको देखेंगे, अभी हम कल देखेंगे। उनमें से पूर्वगत 14 प्रकार का है, ये 14 पूर्वों के यहाँ नाम बता रहे हैं। यथा उत्पाद पूर्व, अग्रायणी पूर्व, वीर्यानुवाद पूर्व, अस्थि नास्ति प्रवाद पूर्व, ज्ञान प्रवाद पूर्व। ये नाम सुना है कभी? हाँ हाँ उसी से ओरिजिन है। सत्य प्रवाद पूर्व, आत्म प्रवाद पूर्व, 8वां कर्म प्रवाद पूर्व, 9वां प्रत्याख्यान प्रवाद पूर्व। इसका नाम याद है? प्रत्याख्यान पूर्व की बात कहाँ सुनी थी? अश्विन में याद नहीं है? अरविंद भाई ने बता दिया आपको, याद है? 11, 9 पूर्व तो बात है, पर प्रत्याख्यान पूर्व की कुछ विशेषता आपको याद है कि नहीं है? जो 30 वर्ष सुख से बिताता है, फिर मुनि दीक्षा लेता है, 8 वर्ष तक तीर्थंकर के पाद मूल में प्रत्याख्यान पूर्व का अभ्यास करता है, परिहार विशुद्धि संयम उसके प्रकट होता है। हाँ ये प्रत्याख्यान पूर्व की बात है। विद्यानुवाद पूर्व, देखो 9 पूर्व तक ही क्यों बताते हैं, 11 अंग 9 पूर्व 11, ये 10वें पूर्व में ऐसी क्या बात है? तो ये जो विद्यानुवाद पूर्व है ना, उसमें जो अन्य जो विद्याएं होती है ना, जिसको मैली विद्या भी कहती है, क्योंकि वो तो तीर्थंकर की वाणी में सभी प्रकार के, जैसे मिथ्यात्व का वर्णन होगा वैसे वशीकरण आदि अन्य भी विद्याओं का इसमें वर्णन है, उसको सुनकर पढ़कर वो भ्रष्ट हो जाता है, आगे नहीं जाता है। तो 10 पूर्व का ज्ञान पूर्ण प्रकट हो जावे और उसका सम्यक तो संयम बना रहे, तो व्यंतर आदि आकर उनकी पूजा करते हैं 10 पूर्वधारी की। तो ये 10वें पूर्व पूरा नहीं कर सकते। आगे कल्याण प्रवाद पूर्व, प्राणावाय, प्राणावाद है ना, प्राणावाय है, क्रिया विशाल पूर्व 13वां नंबर और 14वां लोक बिंदुसार पूर्व। इन 14 विद्यास्थानों के विषय का प्ररूपण जानकर कर लेना चाहिए, हमें वो बता रहे कि जानो और करो, इसका कल करेंगे इसको। इन 14 पूर्वों में क्रम से अभी हर एक में कितनी वस्तु है वो बात बता रहे। तो उत्पाद पूर्व में 10, अग्रायणी पूर्व में 14, देखो 10, 14, 8, 18, 12, 12, 16, 20, 30, 15, वो 4 बार 10 आ गए और 10, हाँ 4 बार ही होने चाहिए। और के पहले का 1 10 निकालो, यानी क्रम से अगर देखना है, देखो उत्पाद पूर्व में 10, अग्रायणी पूर्व में 14, वीर्यानुवाद पूर्व में 8, उसके आगे अस्थि नास्ति प्रवाद पूर्व में 18, हमने तो ज्ञान प्रवाद की बात देखी थी 12वां, क्योंकि उसके 10वें पूर्व में से अपनी बात निकली ना। फिर उसके बाद सत्य प्रवाद में से उसमें 12 और आत्म प्रवाद में 16, कर्म प्रवाद में 20, प्रत्याख्यान प्रवाद में 30, उसके बाद विद्यानुवाद प्रवाद में 15, हाँ आगे 10 10 10 है ना, विद्यानुवाद कल्याण प्रवाद में 10, प्राणावाय में 10, क्रिया विशाल में 10 और लोक बिंदुसार में 10, इसलिए वहाँ कहा 10 10 10 और 10। इतनी वस्तुएं अर्थात महा अधिकार होते हैं, अधिकारों को यहाँ वस्तु कहा है। हर एक की अपनी अपनी संख्या अलग है, प्रत्येक वस्तु में 20-20 प्रावृत अर्थात अवांतर अधिकार होते हैं, यानी उसके सब अधिकार जो कोई हम कहेंगे उसको डिवीजन और सब डिवीजन कहते ना, उसके मेन चैप्टर्स और उसके फिर और उसके सब चैप्टर्स, और एक एक प्रावृत में 24-24 अनुयोग द्वार होते हैं। ये अनुयोग कैसे कहा, प्रावृतक प्रावृतक होते हैं, उसमें दे देखेंगे। यह सर्व ही श्रुत स्कंद पूर्वमी पंचमी दो इस गाथा से सूचित किया गया है, अतएव चूर्णी सूत्र से भी उसका अनुवाद किया गया है। अब इनकी जो डिटेल्स है वो हम कल देखेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो खालो सोवाणी मस्तक नवो सदा देत होड़ो। विनोद है।